ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध के हिरण्यकशिप तृतीय अध्याय के हिरण्यकशिप की अमरवर्ण की योजना श्लोक संख्या 23। सतत कीचक वाल्मीकात् सह ओज बलान्वितः सर्वावयव संपन्नो वज्रसहं ननो युवा उत्थितस्तप्त हेमाभो विभाव सूरिभेदशः। शब्दार्थ सह वह हिरण्यकशिपु तत् उस कीचक वाल्मीका वाम्बी तथा वांस के कुंज से सहम मानसिक शक्ति ओजहम इंद्रिय शक्ति वलम तथा पर्याप्त शारीरिक शक्ति से अन्वितम युक्त सर्वम समस्त अवयवम शरीर के अंग संपन्नहम पूर्णतया फिर से पाकर वज्र संहननहम वज्र के समान मजबूत शरीर वाला युवाम तरुण उत्थितहम उठा हुआ तप्त हेमाभम जिसके शरीर की कांति पिघले सोने के समान थी विभावसुः अग्नि एवं सदृश एधशः काष्ठ से। अनुवाद एवं भावार्थ श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। ज्यों ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों से उसके शरीर पर जल छिड़का त्यों ही हिरण्यकश्यप उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर के अंग प्रत्यंग इतने बलवान थे कि वह वज्र के आघात को भी सहन कर सकता था। इतनी शारीरिक शक्ति एवं पिघले सोने की सी शारीरिक कांति से युक्त वह पूर्ण तरुण पुरुष की भांति बांबी से उसी तरह प्रकट हुआ जिस तरह काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है। तात्पर्य हिरण्यकशिप पुनः जीवंत हो उठा तो उसका शरीर इतना बलिष्ठ था कि वह वज्र के समान वज्र के आघात की आघात को भी सहन कर सकता था। अब वह अत्यंत बलिष्ठ शरीर वाला तरुण पुरुष था और उसके सुंदर शरीर की आभा पिघले सोने की जैसी थी। यह कायकल्प उसके कठोर तपस्या का परिणाम था। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जयतां सुरतौ पंगोर मम मंदमतिर्गतिः मत् सर्वस्व पादं भुजौ श्री राधा मदन मोहनौ। दिव्यादि वृंदारण्य कल्पद्रुमाध्य श्रीमद्रत्नगार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्री लघुबिंद देवौ प्रेष्टलीभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमन् रासरसारम्भे वंशीवट तटस्थितः कर्षण वेणुश्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात् पीतांबरदरुण बिंब फलाधरोष्ठान पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूडामणिः। बर्हापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णीकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालं रन्ध्रान् वेणुरधरसुधयां पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधव। सकिचक वाल्मीकात् सह ओज बलान्वितः सर्वावयव संपन्नो वज्र संहननो युवा उत्थित स्तप्त हेमाभो विभाव सूर्यवेधशः। ज्यों ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से उसके शरीर पर जल छिड़का त्यों ही हिरण्यकशिपु उठ खड़ा हुआ उसके शरीर के अंग प्रत्यंग इतने बलवान थे कि वह वज्र के आघात को भी सहन कर सकता था। इतने शारीरिक शक्ति एवं पिघले सोने किसी शारीरिक कांति से युक्त वह पूर्ण तरुण पुरुष की भांति बांबी से उसी तरह प्रकट हुआ जिस तरह काष्ठ से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो हमारे जो प्रसंग हिरण्यकशिपु किस प्रकार तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने के लिए वो अभी व्यग्रचित से किस प्रकार तपस्या में घोर तपस्या में निमग्न है, तो कथा तो सभी आप लोगों को पता है कि दीति के पुत्र दोनों हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु भगवान वराह देव के द्वारा हिरण्याक्ष को मारे जाने के उपरांत हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हुआ, पर उसने कुछ देर तक उन्होंने धीरज धारण करके अपना कुटुंबी स्वजनों को किस प्रकार वेदांत शिक्षा दे रहा था, किस प्रकार ये शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है, और ये शरीर संबंधी जितने भी हमारे कुटुंबी जन है और संसार में जितने उनके संबंधी है, ये सब क्या है, ये कोई आत्मीय नहीं, ये सब पराय है, मृत्यु के समय कोई आपके साथ नहीं देंगे। तो इसीलिए वो अपना कर्म फल के अनुरूप उनको फल प्राप्त हुआ, तो वो किसी भी प्रकार से वो मारा गया, तो उसके लिए हमको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। हम अपने कर्तव्य के अनुसार हमको भी एक दिन ये संसार से विदा लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार बहुत सारे शिक्षा उन्होंने अपना कुटुंबी जन को दी। जब उन्होंने इस प्रकार शिक्षा देने के उपरांत उन्होंने अपने राजप्रसाद में वापस आए, तो उन्होंने सोचने लगा कि अरे ये जो विष्णु मायावी ये बड़ा कपटी है, न जाने छोटे भाई को तो मार डाला, कभी किस प्रकार योजना बनाकर हमको भी मार डालेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसको भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैं ऐसे ही एक उपाय सोचूंगा जिसके वजह से मुझे वो विष्णु के द्वारा कभी भी नहीं मारा जाऊंगा। तो उन्होंने इस प्रकार चिंतन करके उन्होंने सिद्धांत में उपनीत हुआ कि मैं तपस्या करूंगा, क्योंकि आत्मा ये अमर है और काल भी बहुत है, अनंत है, तो क्यों ना मैं तपस्या करके अजर अमरत्व को प्राप्त हो जाऊं। अभी देखिए, थोड़े देर से पहले उन्होंने किस प्रकार शिक्षा दे रही थी, शरीर अनित्य है, फिर कहते हैं कि मैं अजर अमर बनने के लिए मैं घोर तपस्या करूंगा। यही है आसुरी प्रवृत्ति, यही है आसुरी प्रवृत्ति, क्षण क्षण में उनका सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, अपना शरीर अनुकूल जो है उसी को ही ग्रहण करते हैं, जो प्रतिकूल है तो उसको ठुकराता है। तो इसलिए उन्होंने घोर तपस्या के लिए उन्होंने चल पड़ा। उन्होंने जाकर मंदराचल का शिखर पर वहां जाकर घोर तपस्या में एक पैर पर और एक पैर का अंगूठे के बल पर उन्होंने देवताओं के 100 दिव्य वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। 100, तो आप चिंतन कीजिए, इतना देर तक जब एक व्यक्ति तपस्या करेगा तो उसका हालत क्या हो सकता है। तो उन्होंने तपस्यारत अवस्था में तो घोर कठोर तपस्या किया, तो जिसके उनका जो बाल बढ़ गए थे, जटा हो गए थे, तो उससे ऐसे ही जैसे कि सूर्य का किरण, ऐसे ही वो आग निकलता था और सिर का ऊपर से आग के साथ धुआं भी उत्पन्न होकर समस्त ब्रह्मांड को व्याप्त हो गया और अगल बगल ब्रह्मांड में भी प्रविष्ट हुआ वो जो तेज प्रताप। तो उससे घबराकर देवताओं ने जो इधर उधर घूम रहे थे वो फिर अपने अपने जगह पर अपना अपना लोक में चले गए और देखे कि किस प्रकार संसार के प्राणी उसके तपस्या के बल पर बहुत पीड़ित हो रहे हैं, असह्य यंत्रणा भोग कर रहे हैं। तो उन्होंने विचार किया, देवता इकट्ठे हो गए, क्या करेंगे, इस प्रकार ये हिरण्यकश्यप का उपद्रव है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप संसार का मालिक है, आपने ये संसार को सृष्टि की है, तो फिर अब बचाइए, अन्यथा हम सब लोप हो जाएंगे। ये इतने जो ज्वाला है वो ज्वाला से हम शरीर को रक्षा नहीं कर पाते हैं, आप कृपा करके वो जो तपस्या करने वाला हिरण्यकश्यप उसको रोकिए, आगे इस प्रकार उग्र तपस्या न करें। तो ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को सांत्वना दिया भृगु आदि मुनि के सहित। तो उन्होंने मंद्राचल पर्वत पर जा पहुंचे, तो जाकर देखे कहाँ है हिरण्यकश्यप, कहाँ पर वो तपस्या कर रहा है। तो ढूंढने लगे, नाम निशान तक भी नहीं है जहां पर उन्होंने तपस्या कर रहा था। तो अपना शरीर का जो हड मांस मज्जा अस्थि नहीं चर्म, ये सब जो पिपली का चींटियां और कीड़े सब खाकर खत्म कर चुके थे, केवल शरीर का अस्थि मात्र बचा हुआ था। उसी अस्थि के अंदर, हड्डी का अंदर उसका प्राणवायु रहता था। तो ब्रह्मा जी अपने योग बल से देखा कि यहीं पर ही ये तपस्या कर रहा है। तो देखा कि जहां पर तपस्या कर रहा था वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे उग गए थे, बांस का एक कुंज भी बन गया था। तो उन्होंने तो अपना कमंडलू से उन्होंने बहुत प्रसन्न हुए कि बाबर बाप, इतने घोर तपस्या, दीर्घ काल तक इतने घोर तपस्या, अभी तक देवताओं में भी कोई इस प्रकार कोई तपस्या नहीं की है, लेकिन ये कठोर तपस्या किया। वास्तव में तपस्या से सभी लोग का हृदय पिघल जाते हैं। तो ब्रह्मा जी स्वतः ही तो उनको पुकार कर उन्होंने जगाया, तो अपना कमंडल से जो दिव्य जल उसको सिंचन किया, जिसके वजह से उन्होंने उठ खड़े हुए। उन्होंने महाराज परीक्षित, अरे नारद जी ने कह रहे हैं ना युधिष्ठिर महाराज से, तो ये किस प्रकार ये है, ये कहते हैं कि जिस प्रकार लकड़ी में काष्ठ में अग्नि है पर दिखाई नहीं पड़ता है, जब उसको घर्षण किया जाता है तो उससे अग्नि प्रकट होते हैं, तो उसी प्रकार ये हिरण्यकश्यप इसी प्रकार वो जहां जमीन पर वहां तपस्या कर रहा था, वो मिट्टी का अंदर दीमक जो बांबी है वो उसका अंदर वो समा गया था, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, पेड़ पौधे उगे तो उसका ऊपर 100 दिव्य देवताओं का वर्ष में 100 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। कितने काल लंबी समय है, काल है। तो उन्होंने जब अपना कमंडल से जल छिड़का उसके ऊपर, तो उन्होंने उसी प्रकार जिससे काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है तो उसी प्रकार वो उठ खड़ा हुआ। और देखिए ब्रह्मा जी का तपस्या का भी फल और उसका तपस्या के भी बल। ब्रह्मा जी ने देखा उनके सामने वो इसी प्रकार एक तरुण युवक की भांति खड़ा हुआ और जिसके शरीर की कांति किस प्रकार था, ये कहते हैं जैसे पिघले हुए सोने के रंग होता है, रूप होता है, उसी प्रकार उसका दिव्य। तपस्या से किस प्रकार दिव्य क्रांति उत्पन्न होती है, भोग से नहीं। तो उन्होंने पूछा, बेटा अब वर मांगो, मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, अब तक इस प्रकार देवताओं और ऋषियों में कोई भी इतना दीर्घ काल तपस्या करे, कठोर तपस्या करके इस प्रकार मुझे प्रसन्न नहीं किया था, आपका तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं, अब वर मांगो। तो अभी यो वर मांगेगा आगे, क्योंकि उन्होंने किस प्रकार निर्णय लेकर उन्होंने तपस्या करने गया था, मैं अजर अमर हूंगा। तपस्या करना चाहिए पर इस प्रकार तपस्या ना करें जो संसार को पीड़ा प्रदान करें, क्लेश दें। तो गीता जी में भगवान क्या कहते हैं वो तपस्या के बारे में, जो अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपजना, दंभ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता, कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्राम मचेतशः, माम चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्या आसुर निश्चयान। कहते हैं कि उस तपस्या को आसुरी तपस्या समझो। क्या है ना, जो अशास्त्र शास्त्र से विधान नहीं किया गया हो, तो शास्त्र में कभी इस प्रकार वर्णन नहीं है कि आप तपस्या करके संसार को पीड़ा दें। महाराज ध्रुव उन्होंने भी कठोर तपस्या की 6 महीना मात्र, इन्होंने तो देवताओं का जो आयु है वर्ष है तो 100 साल तक उन्होंने तपस्या की है, लेकिन ध्रुव महाराज मात्र 6 महीना तपस्या की और देखो किस प्रकार दिव्य लोक को प्राप्त हो गया। और हिरण्यकशिपु ये अशास्त्र विहित जो तपस्या को आचरण करके क्या परिणाम हुआ, अंततगत्वा मारा गया वही विष्णु भगवान के हाथ में। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप मुझे ऐसे ही वर प्रदान कीजिए कि मैं किसी विष्णु अथवा देवता की मनुष्य और संसार में किसी भी प्राणी से मैं मारा ना जाऊं। तो आप जानते हैं कितना एक लंबी लिस्ट उन्होंने ब्रह्मा जी का ओर से बढ़ा दिया कि मुझे ये वर चाहिए। ब्रह्मा जी ने अपना मन से मन उन्होंने हंसने लगे, बोले कि कितना बेवकूफ है ये, कितना मूर्ख है, मुझे वर मांग रहा है कि मैं अमर वर दूंगा उसको, जबकि मैं भी शरीर त्यागता हूं और मैं इसको अमरत्व दूंगा, ये कैसे मूर्ख है और इतना घोर तपस्या करके मुझे इस प्रकार वर मांगता है। पर उन्होंने ब्रह्मा जी ने वो वर तो उनको दे दिया, तथास्तु कह दिया, पर उन्होंने कुछ चाबी अपना हाथ में रखा कि मेरे प्रभु का क्या होगा। ब्रह्मा जी अपने पिता भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए कहते हैं कि आगे का काम आपका ऊपर, क्योंकि ब्रह्मा भगवान के द्वारा श्रेष्ठ प्रथम जीव है और भगवान का अत्यंत प्रिय है, भगवान का अत्यंत प्रिय है। तो यही भगवान एवं भक्त का बीच में यही प्रतिस्पर्धा हमेशा चलते आ रहा है। भगवान चाहते हैं मेरे भक्तों का नाम संसार में फैले और भक्त चाहते हैं मेरे प्रभु का यश संसार में सर्वत्र फैले, तो दोनों का ऐसे प्रतिस्पर्धा। तो इसका ज्वलंत दृष्टांत क्या है, श्रील प्रभुपाद, उन्होंने भगवान के लिए क्या सहन नहीं किया 70 साल के उम्र में, और जलदूत में जब उन्होंने जा रहे थे तो कितने बार हार्ट अटैक हुआ, फिर भी उन्होंने भगवान का वाणी को प्रचार करने के लिए वो चुके नहीं। उन्होंने गीता का वो श्लोक भली भांति याद नहीं, हृदयस्थ था, क्या है? भगवान गीता में कहते हैं उनका वाणी की जो प्रचार करते हैं, नचे तस्मात मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृत्तम भविता नच तस्मात भूभी अन्यतर भूभी। कहते हैं कि जो मेरी इस दिव्य वाणी को, ये भगवद गीता का उपदेश को संसार भर में जन सामान्य का समक्ष ये उपस्थापन करता है, उसके समान प्रिय ना कोई हुआ है ना आगे होने वाला है। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः। तो इस प्रकार तपस्या का ये दुष्परिणाम है, उग्र तपस्या का, जो अशास्त्र विहित घोर तपस्या करते हैं। तो एक तो दंभ अहंकार इससे युक्त होकर वो करता है कि मैं तपस्या कर रहा हूं, मन में अभिमान है। लेकिन तपस्या का फल होता है शारीरिक समस्त धर्म को भस्मीभूत करना, राग कर देना। लेकिन वो दंभकार संयुक्ता काम राग बलान्विता, काम मन में बहुत सारी इच्छा है, क्या है, समय आएगा मैं भी ब्रह्मा जी से मन, अपना मन से यही बात सोच रहा है कि मैं भी आपको भी वहां से विताड़ित करके वो ब्रह्म पद को प्राप्त करूंगा। मैं इतने साल उग्र तपस्या किया तो समय आने पर आपको भी आपका पद से च्युत करके मैं वहां पर बैठूंगा। इस प्रकार तो इतना ही नहीं है, शरीर को इतना तपाता है, शरीर में परमात्मा भगवान जो विद्यमान उनको भी कष्ट होता है। ये कहते हैं कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतस, शरीर समस्त अंग प्रत्येकों को और इंद्रियों को उन्होंने कष्ट प्रदान करते हैं। माम च एव अंतस्थ, मुझको भी जो मैं प्रत्येक शरीर में विद्यमान उसके शरीर में भी हूं, तो मुझे भी वो कष्ट प्रदान, पीड़ा प्रदान करता है। और इस प्रकार जो तपस्या है, ये तपस्या क्या है, न आसुरी निश्चयन, ये तप आसुरी के तप है। आसुरी के तप हमेशा हमेशा के लिए धरती पर केवल पीड़ा ही उत्पन्न करती है ये तपस्या। पर ध्रुव महाराज और भरत महाराज के पिताजी ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव अपना पुत्रों से कहते हैं कि तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेत, दिव्य तप करो जिससे अंतःकरण शुद्ध हो। तो होने से क्या होगा, ये कहते हैं शुद्ध, यस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम, अनंत ब्रह्म सुख की अनुभूति होगी। तो दिव्य दिव्य तपस्या के लिए सभी प्रोत्साहन देना चाहिए सभी को, न कि आसुरी अशास्त्र विहित ये जो घोर तपस्या उग्र तपस्या उसको कदाचित प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, बल्कि उसको रोकना चाहिए। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको तो बर दे दिया, बोला कि ठीक है तुमने जो कहा तो तथास्तु कर दिया। मन में बहुत खुश हुआ, अब क्या करेगा वो विष्णु मायावी, छोटे भाई को मार डाला कोई बात नहीं, अभी मेरे बारी आने दो, देखूंगा अभी अमरत्व को प्राप्त तो हो गया, अभी उसके साथ लड़ाई करूंगा। ब्रह्मा जी ने मन में इस प्रकार सोचे, क्योंकि उनका स्वभाव है भगवान का जो यश को संसार में फैलाना है, क्योंकि जो बाकी काम वो भगवान करेंगे, क्या करेंगे, उन्होंने वरदान दे दिया तो भगवान किस प्रकार, भगवान विष्णु किस प्रकार प्रहलाद, ये क्या हिरण्यकशिपु, क्या नाम, नृसिंहदेव का रूप में प्रकट होंगे और हिरण्यकशिपु को मारेंगे, ये भगवान का ऊपर इतना छोड़ दिया उन्होंने, छोड़ दिया। भली भांति ये नहीं कि वो अज्ञानवश ऐसे दे दिए, नहीं, रहस्य को जानना चाहिए। ब्रह्मा जी भली भांति जानते थे कि मैं अमर नहीं हूं और मेरे पास जो भी है सभी मरणशील जो भी उपाय है, केवल भगवान विष्णु के पास ये समस्त काम है। तो मेरे वर में इस प्रकार कोई मैं देख नहीं रहा हूं कि ये अमरत्व को प्राप्त होकर ये फिर संसार में राजत्व करेगा। तो उन्होंने भगवान का ऊपर छोड़ दिए। यही आपको बताया कि भगवान एवं भक्त में ये प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा हमेशा चली आ रही है कि क्या ना भगवान अपना भक्तों का यश बढ़ाते हैं और भक्त भी भगवान का यश बढ़ाते हैं। प्रभुपाद जी का उदाहरण तो आप देखते हैं। तो और भी शास्त्र में ऐसे ही कहा गया, कहते हैं बहुत सुंदर एक चौपाई है, प्रभु सिंधु घन सज्जन मोरा चंदन तरुहरी संत समीरा। कहते हैं प्रभु सिंधु घन माने जो बादल होते हैं ना, बरसात में जो घने काले बादल होते हैं वो बादल को देखकर मयूर मोर क्या करता है, खूब आनंद लेता है और नाचता है। उसके लिए वो एक प्रेरणा है। तो मैं को बादल को देखकर घना गर्जित वो जो काले काले बादल को देखकर वो खूब आनंद से नाचता है। प्रभु सिंधु घना सज्जन मोरा, और ये कौन उपमा देते हैं कि उस प्रकार जो बादल घन बादल है ये भगवान श्री कृष्ण है और उनका जो प्रियजन है तो ये मयूर के समान, अर्थात उनके जो भक्तजन है ये मयूर के समान है। और कैसे ना चंदन तरुहरी संत समीरा, भगवान ये चंदन वृक्ष के समान और ये सज्जन लोग क्या होते हैं समीर, समीर मतलब जो मंद मंद शीतल वायु उसको समीर कहते हैं, तेज हवा आंधी तूफान को समीर नहीं कहते हैं। शरीर को सुहाने वाले जो मंद मंद शीतल वायु वही उसी का नाम है समीर। प्राय ये बसंत ऋतु में ये बहता है समीर। तो कहते हैं तो क्या होगा, तो प्रभु चंदन के वृक्ष हो जाएंगे और उनके भक्त ये सब समीर हो जाएंगे। तो क्या होगा, जैसे जंगल में चंदन वृक्ष घोर जंगल के अंदर मनुष्य तो जा नहीं सकता है चंदन का वृक्ष को ठौर करने के लिए, तो कहां ढूंढेगा कितने हिंस्र जंतु उसके अंदर है, वो तो उनको नाश्ता कर लेंगे। तो उस प्रकार उसको ठाब करते हैं, अर्थात वो वृक्ष अमक जागा में है उसको कैसे पहचानते हैं कैसे जानते हैं, कहते हैं जब ये मंदर सॉरी पर्वत से जो मृदु मलय सुगंध चंदन का वायु आकर मनुष्य के घ्राण में प्रविष्ट होता है तब उन्होंने जानता है कि ये चंदन का सुगंध है, इस दिशा से वायु बह रहा है तो इस दिशा में जरूर चंदन वृक्ष होगा, तो वो अंदाजा लगाता है। फिर अपना उपाय से वो योजना बनाकर फिर चंदन वृक्ष को वो काट कर लाता है। तो उसी प्रकार संसार में भगवान का यश को भक्त ही संसार में फैलाता है। अगर हमारे प्रभुपाद जी ने अब ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ अगर नहीं बनाते हैं तो सारे ब्रह्मांड में ऐसे सारे पृथ्वी में जितने भी देश है सभी देश में अभी भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त भी हो चुके हैं। तो कैसे हुआ, तो उनका भक्तों के माध्यम से। तो भक्त यही चाहता है, यही चाहता है कि मेरे प्रभु का यश सभी का पास पहुंचे। पहुंचने से क्या होगा, तो क्या उनका रोटी पानी उससे हो जाएगा, कहते हैं कि नहीं, रोटी पानी ये तो ये शरीर का आहार है पर जो आत्मा के लिए जो चाहिए तो वो भगवान का रूप लीला गुण ये सब आत्मा का खाद्य है तो उनका पास पहुंचना चाहिए। आत्मा पिंजरा में, सोने का पिंजरा में हम चिड़िया को बंद कर रखते हैं और रोज साफ करते हैं, बढ़िया एकदम चकाचक बना देते हैं, पर उसको कुछ खाने नहीं देते हैं, तो क्या होगा वो पक्षी का क्या होगा दशा? तो कुछ दिन का बाद वो खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार हमें शरीर का तो यत्न लेते हैं पर आत्मा का यत्न नहीं लेते हैं। आत्मा का बारे में हम आत्मा है ये तो पता हो तो फिर आत्मा का यत्न लेंगे, ये भी पता नहीं ये लोगों को मैं आत्मा हूं ये भी पता नहीं है। तो इसी ज्ञान को सर्वत्र प्रचार के लिए जो गीता में भगवान कहते हैं, तो इस प्रकार अद्वितीय जो गीता के वाणी है संसार में अद्वितीय है, और जो इस गीता को गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम मत। इस प्रकार ये हम तो रोज गंगा स्नान करते हैं, किस लिए? शरीर का मल को साफ करने के लिए। कहते हैं कि मल निर्मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मलनाशनम। सकृत मतलब एक बार, अगर गीता रूपी गंगा जी में आप एक बार आपके डुबकी लगा लिया तो फिर और संसार रूपी मल नहीं रहेगा, अर्थात ये संसार बंधन से आप पार हो जाएंगे। तो हम लोग कितने बार गीता पढ़ी है? एक बार नहीं, अनेक बार रोज पाठ करते हैं। और लिखने वाला ही कहते हैं सकृत गीता मसी स्नानम, एक बार ही गीता रूपी गंगा में आप स्नान कीजिए, संसार मल नाशन, संसार से आप दूर रह जाएंगे, संसार आपके लिए मिट जाएगा। पढ़ने हम नहीं पढ़ते हैं गीता, बस अभ्यास वशत ऐसे ही करते हैं। अगर पढ़ेंगे ये गीता, नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। गीता के ज्ञान के समान और कोई ऐसे ज्ञान नहीं पवित्र ज्ञान, ये समय होने पर वो योग में आपको डाल देता है। तत्स्वयं योग संसिद्ध, ये योग में पूर्णता को प्राप्त करवा देता है, देती है ये गीता। लेकिन उसी प्रकार हृदय से गीता जी का जो बात भगवान कही है तो उसको धारण करना चाहिए, तभी गीता का अध्ययन माना जाएगा। नहीं तो हम जैसे ही अध्ययन करते हैं तो कितने बार तो अध्ययन कर चुके हैं, पर वो कहते हैं कि एक बार सकृति गीता स्नान कहा शरीर से, और हमारे शरीर से हमारे क्या दृढ़ हो रहा है शरीर में, हम शरीर से हमारे भाव ये हटना चाहिए लेकिन और मजबूत हो रहा है। तो सुनिए, हम सुनते हैं पढ़ते हैं पर क्या होता है, शरीर से ज्यादा आसक्त होते हैं, शरीर के लिए सारे बंदोबस्त सारे प्रयास उस शरीर साधन प्रसाधन में लगा देते हैं लेकिन आत्मा को कोई नहीं पहचानते। तो इसलिए जो भगवान का भक्त प्रभुपाद जी ने तात्पर्य पूर्व श्लोक का तात्पर्य में तो उन्होंने कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो अनन्य भक्त होते हैं तो उनको इस प्रकार ये तपस्या नहीं चाहिए, उग्र तपस्या, तपस्या तो चाहिए लेकिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तपस्या चाहिए। ऐसे ही एक टांग में एक अंगूठी पर इतना साल तक बिना जल कुछ खाए पिए उग्र तपस्या करना ये अशास्त्र विहितम और ये संसार के लिए हानिकारक। तो उन्होंने इस प्रकार तपस्या को निषेध करते हैं। ये शास्त्र निषेध करता है कि इस प्रकार तपस्या बिल्कुल ना करें। करना है तो भगवान को जैसे सुहाए, जैसे प्रसन्न करें, तो इसी प्रकार तपस्या करना चाहिए। तो जैसे कि भक्तजन वो हमेशा तपस्या करते हैं, तपस्या वो किस प्रकार तपस्या, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट है ना, तो उनका चेष्टा ऐसे ही है। शरीर अनुकूल जो जो भी वस्तु है उसको ग्रहण करते हैं और जो प्रतिकूल है उसको वर्जन करते हैं। ये है तो भगवान विष्णु के प्रसन्न करने की ये विधियां हैं। बहुत सारे गीता में तो सारे दे दिया गया किस प्रकार आहार करना चाहिए, किस प्रकार विहार करना चाहिए, किसका संग करना चाहिए, किसका संग से दूर रहना चाहिए। क्षण अभी सज्जन संगति रे का भवती भवारण व तरणे नौका, कहते हैं एक क्षण अगर हमें सज्जनों का संग किया तो फिर संसार रूपी सागर से हम तर जाएंगे। तो हमारे सत्संग कितने बार हो चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं कोई बात नहीं है। पर आपने आ गए ना, ठिकाना पर आ गए आप लोग, और जो नहीं आए उन लोगों को लाना है। एक बार इस रस को जो आस्वादन करते हैं तो फिर दोबारा विषय सुख के प्रति कभी लालायित नहीं होंगे। ये ऐसे ही ये दिव्य सुख ऐसे ही है। गीता में भगवान कहते हैं नेहा विक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में जो भगवान का भक्ति करने में जो भी हमारे चेष्टाएं हैं तो ये जारी रहनी चाहिए, कभी बंद नहीं होना चाहिए। ये समय आने पर अब आपको अनुभव होता होगा, जैसे कि परिवार छोड़कर आप लोग आए, चाहे माता हैं चाहे प्रभु जी हैं, तो जो भी घर छोड़कर आ गए हैं तो घर में भी और परिवारजन हैं, लेकिन जाते तो एक व्यावहारिक संबंध को निभाने के लिए जाते हैं पर वहां टिक नहीं पाते हैं, ज्यादा दूर उनको अच्छा नहीं लगते हैं, वो लोग सोते रहते हैं। तो आप लोग 3 बजे उठकर भगवान का नाम जप करते हैं, स्नान शौचादि करते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं, तो उससे आप पूरा आपको पसंद नहीं होता है। तो ज्यादा देर आप वहां रुकते नहीं, फिर छोड़कर आ जाते हैं। तो देखो यही भगवान का जो भक्तों का संग का परिणाम। इसलिए जिन्होंने कहा क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णव तरणे नौका, ये झूठ नहीं है, ये आपका अंदर ये बीज डाल दिया गया। फिर जब आप उस भक्ति बारी से आप भक्ति जल से उसको सिंचन करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, तो फिर उसको फल फूल प्रस्फुटित होंगे और फल लगेगा। तो फिर कौन सा फल लगेगा उसमें, भक्ति रूपी फल, प्रेम फल। तो जब उसको आस्वादन करेंगे तो उस समय आप पूर्व ये को किसी प्रकार अपना यत्न का सहकार अपना ये भक्ति लता वृक्ष को कितना चार ओर से सुरक्षित रखकर अपने बढ़ाया। और अगर असत संग हो जाता है तो क्या होता है, जितने भी आप कितने सालों का 50 सालों का जो तपस्या 1 मिनट में खत्म हो जाता है। आप घर बनाते मकान बनाते अब तो सब पक्के हो गए, लेकिन वो जो कच्चे मकान थे झोपड़ियां थी तो पहले तो क्या होता था, कितने देर तक उसको कट्ठा सामग्री सब इकट्ठा करके बनाने के लिए वर्षों लग जाता है ना। पर जब वो आग लगती है घर में कितना देर लगता है उसको भस्मीभूत करने के लिए, बहुत कम समय। तो उसी प्रकार असत संग ये अग्नि के समान, सारे हमारे प्रयास जो भी संचित पुण्यकर्म को वो पुण्यकर्म को नष्ट करेगा लेकिन भक्ति को नहीं करेगा। किंतु जो भक्तिमान पुरुष है तो उसे पुरुष मतलब केवल प्रभु नहीं, पुरुष शब्द का अर्थ स्त्रीवाची भी है, पुरी शेते इति पुरुष, जिनके शरीर में भगवान है, का स्त्री का शरीर में भगवान नहीं है, केवल पुरुष के शरीर में है, तो शास्त्र का दृष्टि से पुरुष का अर्थ उभय मनुष्य। तो इस प्रकार मनुष्य का प्रयास होना चाहिए कि हमारे भक्ति सुरक्षित रहें। ऐसे ही संग, क्योंकि बहुत सारे अनवांटेड जो चीज होते हैं संसार में, बहुत सारे, प्रभुपाद जी ने गीता में कितना बताए, क्या कहते हैं उसको जो धान खेती में उगता है, खरपतवार, उनको उखाड़ कर फेंक देते हैं, और जो आवश्यक वस्तु जो पेड़ हैं तो उनको रखते हैं, धान गेहूं उनको ही रखते हैं। तो इस प्रकार आएंगे, जितना जितना हम भक्ति करेंगे उतना उतना माया हमारे पास है, वो अपना जो चेले चमड़े उनको भेजेंगे, उसने हमको इंटरप्ट माने बाधा देने के लिए वो भेजेंगे, पर उससे आप विरत ना हो। आप अगर सामान्य रूप से भक्ति नहीं कर रहे हैं तो माया का जो चंगुल में है तो ठीक चल रहा है, उनको सुख का बारे में पता नहीं, दुख तो जीवन ही भर वो दुख भोग रहे हैं, तो सुख का अनुभव हो तो तुलना करेंगे, जब आप इधर आते हैं सुख दुख का ये कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो सुख के तुलना में दुख किस प्रकार है, तो उनको पता नहीं है, वो उसमें रहते हैं। तो जब भक्तजन ये भगवान का भजन करते हैं तो उससे जो आनंद प्राप्त होता है, तो आनंद अनुभूति का जो परिणाम है तो वो क्या करता है, आपको हमेशा खुश रखता है। अगर ऐसे ही नहीं हो तो कोई भक्ति नहीं करेगा, अगर मन में शांति और सुख प्राप्त नहीं होंगे तो फिर कोई भक्ति नहीं करेगा। तो संसार में सभी लोग तो खाते पीते रहते हैं, हम भी करेंगे ऐसे ही, तो सुख नाम को वस्तु तो है ही नहीं, लेकिन हमको अनुभव है दोनों को, हमें ये किया क्योंकि संसार से आए भगवान का भक्ति करने के लिए, तो जो भक्ति करते हैं तो उसका अनुभव थोड़ा बहुत महसूस तो होता है, पर उतना ही पर्याप्त नहीं है, और भी करना चाहिए। और तो इसलिए कहते हैं तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम, तो तीव्र भक्ति होना चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।